بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وساوس اور خیالات کے سلسلے میں بات چل رہی تھی اس کی دو قسمیں جس میں سے ایک کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے اور دوسرا جس کا تعلق فسق و فجور کے ساتھ ہے وہ بتلا دیا ایک تیسری قسم ہے خیالات اور وساوس کی کہ فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ خیال اور وہ وسوسہ جو دل میں آ رہا ہے وہ کوئی گناہ کا نہیں ہے جائز چیز کا وسوسہ ہے خیال ہے لیکن موقع آیا آدمی جب کسی عبادت کو انجام دینے کے لیے بیٹھتا ہے نماز کی نیت باندھی دکان پر پہنچ گئے تو دکان پر جانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے شریعت مطہرہ نے تجارت کے لیے جو حدود قیود شرائط لاگو کیے ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے آدمی تجارت کرے وہ بھی عبادت ہے لیکن یہاں نماز کے دوران یہ جو خیال آیا قرآن کی تلاوت کے لیے جب بیٹھے تو کوئی خیال آ گیا بھی بچوں کا خیال آیا اور کسی جائز چیز کا اسی طرح تسبیح پڑھنے کے دوران دعا کے دوران عبادات کی ادائیگی کے موقع پر یہ جو خیالات اور وساوس آتے ہیں ان کی وجہ سے بھی آدمی ایک قسم کی ضیق اور تنگی محسوس کرتا ہے تو اس سلسلے میں جو بنیادی چیز ہے وہ تو یہ سمجھنے کی ہے کہ دراصل ہمیں اپنی ان عبادتوں کی ادائیگی کے لیے جس نوع کی محنت کرنی چاہیے تھی اور ان عبادتوں کو گویا محنت کر کے ریاضت کر کے مشقتیں اٹھا کر اپنے آپ کو اس کی ادائیگی کے قابل بنانا تھا اس میں جو کمیاں ہیں اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے وہی نماز کو جی لگا کر پڑھنے کے لیے جیسی محنت کرنی چاہیے نماز میں خشوع حاصل کرنے کے لیے سوال یہ ہے ہم اپنے دل سے پوچھیں اتنی ہماری عمر گزر گئی ہم نے کتنی محنت کی اس سلسلے میں کیا کوششیں کی کیا تدبیریں کی حقیقت تو یہ ہے کہ جب یہ موضوع زیر بحث آتا ہے تب ہمیں احساس تو ہوتا ہے اور اپنی کمی کے اوپر افسوس بھی ہوتا ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے کوئی جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے لیکن ایک وقتی چیز ہوتی ہے پھر جہاں وہ بحث وہ صاحب تذکرے ختم ہوئے بھول بھال کر ہم اپنے وہی پرانی ڈگر پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اس کے لیے کوئی دنیا کا کوئی بھی کام ہو بغیر توجہ اور بغیر محنت کے حاصل ہو سکتا نہیں طلبہ ہیں ہمارے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے کتنی مشق کرنی پڑتی ہے سال ہا سال اس میں لگاتے ہیں اپنے اس کے لیے ریاضت کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لگے رہتے ہیں آپ اپنے خط کو جو لکھ رہے ہیں اردو میں آپ تحریر جو لکھیں گے خط کو درست کرنے کے لیے خوش نویسی کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کوئی بھی کمال پیدا کرنے کے لیے آدمی کو محنت تو کرنی پڑتی ہے محنت کیے بغیر کوئی کمال حاصل نہیں ہوتا تو نماز کے اندر خشوع خضوع عبادات کی ادائیگی توجہ کے ساتھ ہو اس کے لیے بھی محنت کرنے کی ضرورت تھی تو اس میں جو ہماری طرف سے کمی آئی اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نماز کو اس طرح ادا کرنے کی دیکھو نماز کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے اس کا ظاہری ہے اس کی ظاہری شکل و صورت اس کی پوری تفصیل फुकहा ने अपनी किताबों में बयान कर दी। फिका की किताबों में नमाज के मसाइल से मुताल्लिक हजारों सफहात लिखे हुए हैं और उसमें सारी तफसीलात मौजूद हैं। वही हजारों सफहात, उनका इख्तिसार भी इब्तदाई किताबें जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, तालीमुल इस्लाम, बेशते समर और दूसरी किताबें ऐसे दीनी तालीम के रसाइल वगैरह, उसमें उन सब का खुलासा मुख्तसर तौर पर बतला दिया जाता है। नमाज में कौन सी चीज़ें फराइज में भी दो किस्में, शराइत और अरकान। वो फ़र्ज जो नमाज से बाहर पहले कर लेने होते हैं, जिस्म की पाकी, कपड़ों की पाकी, उनको शराइत से ताबीर करते हैं। वो फराइज जिनका नमाज के अंदर से ताल्लुक है, क़याम है, क़िरात है, रुकू है, सुजूद है, उसको अरकान से ताबीर करते हैं। तो बहरहाल फराइज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहबात, आदाब, मकरूहात और मकरूहात के भी दोनों दर्जे, तहरीमी और तंजीही, ये सब चीज़ें तफसील से किताबों के अंदर मौजूद है। लेकिन हमारा हाल क्या है कि हमने बचपन में जो नमाज सीखी, हम बहुत सारी किताबें पढ़ के फारिग हो जाते हैं, मौलवी बन जाते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं, सब कुछ, लेकिन नमाज बचपन में जो पढ़ना सीखा था बस वही चल रही है। उस नमाज का कभी जायज़ा लेने की नौबत आती नहीं। मैंने उस वक्त कहा था रिनोवेशन, आजकल एक रिनोवेशन का लफ्ज़ चला है कि आप अपने घर को एक दो साल के बाद फिर ज़रा मरम्मत कराएंगे, रंग रोगान कराएंगे, ज़रा उसका ये होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो हर चीज़ का रिनोवेशन होता है, लेकिन नमाज की रिनोवेशन का हमें फिक्र नहीं है। नहीं, उसको भी बार बार उसका जायज़ा लें, आपस में मुजाकरा करें। तो बहरहाल मैं तो ये जो कहने जा रहा हूँ ये है कि खुशू तो आएगा, अल्लाह ताला पैदा करेंगे, लेकिन पहले नमाज के जाहिरी ढांचे को सही तरीके से अदा करने के लिए फुकहा ने किताबों में जो तफसीलात लिखी, हमें पहली मेहनत तो ये करनी है कि हमारी नमाज पूरी उसके मुताबिक हो। आप तन्हाई में किताब लेकर बैठ जाओ, देख लो उसमें फराइज क्या, वाजिबात क्या, सुनन क्या हैं, आदाब क्या हैं, मुस्तहबात क्या हैं, और देखो कि हमारी नमाज में कोई सुन्नत छूट तो नहीं रही, कोई अदब छूट तो नहीं रहा है। ऐसे ही मकरूहात क्या हैं, हमारी नमाज में किसी मकरूह का इर्तिकाब तो नहीं हो रहा है। कभी एक छोटी सी चीज होती है और उसकी वजह से आदमी नमाज के खुशू से महरूम कर दिया जाता है। एक वाकया सुनाता हूँ, हमारे हजरत मुफ्ती महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह से आपकी मजलिस होती थी वहाँ छत्ता में जहाँ आपका क़याम था असर के बाद तलबा, क्योंकि हजरत बड़ी शफकत फरमाते थे और हजरत का मिजाज ऐसा था कि तलबा को मानूस कर लेते थे, बेतकल्लुफ। तो तलबा जो पूछना चाहे पूछे, सवाल पूछने के मामले में कोई बाक महसूस नहीं करते थे। तो बाद मरतबा ऐसा होता कोई तालिम इल्म पूछना चाहता है, हजरत की मजलिस में पाबंदी से हाफिज तैयब साहब दामत बरकातुहुम आज भी मौजूद हैं, हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से शागिर्द भी हैं। तो वो पाबंदी से आते थे और बाद मरतबा कोई तालिम इल्म खुद पूछने के बजाय हजरत को उनसे कह दे हजरत, या किसी ने पूछा और वो अपने माफी ज़मीर को कमा हक़ अदा नहीं कर सका तो हाफिज साहब फिर अपनी तरफ से उसको पूछवा वे करते थे। एक मरतबा एक तालिब इल्म ने पूछा कि हजरत ये वजू के अंदर इसराफ यानी पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें उसका क्या नुकसान है? तो जवाब में हजरत ने फरमाया भाई मकरू है। तो जब हजरत ने फरमाया मकरू है तो हाफिज साहब ने अर्ज किया हजरत ये नहीं पूछता कि उसका हुक्म क्या है कि पानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना नाजायज क्या है मकरूह, ये तो ये पूछता है कि उसका नुकसान क्या है। तो हजरत ने जवाब में फरमाया उसका नुकसान यह है कि उसकी वजह से नमाज का खुशू खत्म हो जाता है, नमाज का खुशू खत्म हो जाता है। देखो एक छोटी सी चीज है, आज وضو کے دوران اسراف سے بچنے کا اہتمام کرنے والے کتنے؟ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت محی سننا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دیکھا وہاں ہردوئی حضرت کے ہاں نل پر وضو کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ کسی کو اجازت، ٹنکی کے پاس لوٹے پڑے رہتے تھے، لوٹے میں پانی لو اور وضو کرو۔ آپ نل پر وضو کریں گے تو آپ کتنی ہی احتیاط برتیں پانی زیادہ استعمال ہو کر رہے گا۔ اگر ہمارے بزرگوں نے نل پر وضو کرنے کا طریقہ بتایا کہ نل بند کر دو، پانی لے کے یہ کرو، سب تفصیلات ہیں، مفتی عبدالرؤف سکھروی دامت برکاتہم کا جو رسالہ ہے نماز سے متعلق، اس میں حضرت نے تفصیل سے یہ بتایا ہے، لیکن اتنا کرنے کے بعد بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک بالٹی نیچے رکھ لیجئے اور اسی احتیاط سے وضو کیجئے جو بتائی گئی ہے نل پر وضو کے معاملے میں، تو اور پھر لوٹے سے وضو کیجئے، لوٹے میں آپ وضو کے لیے جتنا پانی لیں گے وضو کے بعد پھر بھی اس میں بچ جائے گا، اور وہ جو نل پر کیا ہے ساری احتیاط برتتے ہوئے کیا ہے تو وہ بالٹی میں جو پانی جمع ہوا جو آپ نے استعمال کیا وہ تو کیا، لیکن جو اندر جمع ہوا ہے وہ آپ دیکھیں گے تو دو تین لوٹے ضرور ہیں۔ یہ اسراف، ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ضرورت سے وضو پانی استعمال کرنا اسراف مکروہ۔ اب مکروہ کون سا مکروہ ہے؟ تحریمی، بلکہ جہاں در مختار کے اندر تو اس کو وہ بمائل مداری سے حرام، یہ جملہ ہے در مختار کا، مدارس کا مطلب یہ ہے کہ وقفہ کا پانی، مسجد میں ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ تو وقفہ کا ہے نہیں، ہم نے پیسے تھوڑے خرچ کیے ہیں، اللہ کے بندوں نے وضو کرنے والوں کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، وقفہ ہے۔ مدرسوں میں، مساجد میں، تو اس پانی کے اندر کوئی اسراف کرے تو یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں جو پانی وضو کے لیے رکھا گیا ہے اس میں خود بخود ایک شرط لگی ہوئی ہے کہ آپ کے وضو کے لیے وہ رکھا گیا ہے تو آپ وضو جتنے پانی سے کر سکتے ہیں اتنا پانی ہی استعمال کرنے کی آپ کو اجازت۔ الضرورت و تتقدر و بقدر الضرورہ، ہمارے اہل علم جانتے ہیں ایک قاعدہ ہے فقہ کا، کوئی چیز کسی ضرورت کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، جائز قرار دی گئی ہو تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اس کا یہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ اب ہمارا حال کیا ہے، طلبہ کو ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں جب نل کے اوپر وضو کے لیے بیٹھیں گے، یہ آیا اس سیٹ پر، دوسرا آیا نل چالو کر دیا اور وہ بھی بھرپور پورا کھول دیا، اور ابھی تو ہاتھ بھی نہیں دھوئے، باتیں چل رہی، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، 5-7 منٹ تو باتیں کر رہے ہیں اور وہ نل پورا کھلا ہوا، اندر سے پانی نکلا چلا جا، شاید کتنے مٹکے نکل گیا، اس کے بعد شروعات ہوگی۔ یہ تو ایک مثال دیتا ہوں میں، اور جو لوگ احتیاط برتتے ہیں وہ بھی کتنی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ایک مکروہ کہنے کو تو مکروہ ہے لیکن اس کے ارتکاب نے ہمیں نماز کی روح سے محروم کر دیا۔ نماز کی روح کیا تھی؟ خشوع۔ خشوع کے بغیر نماز بے جان ہے۔ تو یہ ایک ایک سنت، ایک ایک ادب اپنی جگہ پر اتنا قیمتی ہے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمیں تو کرنا ہے آنکھیں بند کر کے تسلیم اور رضا کی کیفیت کے ساتھ کہ اللہ کا حکم ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا، اس میں کیا حکمت ہے اس میں مت پڑو، کرو وہ، تو دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کیسا نواز دے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، بات اس پر چل رہی تھی کہ نماز کے سلسلے میں کتابوں میں جو طریقہ لکھا ہے، ہم کم سے کم اگر اپنی نماز کو اس کے مطابق کر لیں، بچپن سے جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں اسی کے بھروسے پر نہ رہیں۔ ایک بہت بڑے عالم وہ مجھے کہنے لگے، ایک مرتبہ مذاکرے میں بیٹھے یہاں نماز کے، تو مجھے کہنے لگے کہ سالہاں سال سے، بچپن سے اپنی نماز میں ایک غلطی میں میں مبتلا تھا، آج مجھے اس کا یہ ہوا احساس ہوا مذاکرے کے دوران، اگر اس مذاکرے میں نہ بیٹھتا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اپنی اس غلطی کا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی، ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے، نماز کی طہارت अत्तुहूर निस्फुल ईमान और मिफ्ताहु सलात अत्तुहूर के क्या है, नमाज की कुंजी जो है वो वुजू है, पाकी है। बल्कि अल्लाह दुआ आपने पढ़ी, अल्लाह इन असलों का तमाम अलवुजू है व तमाम सलात व तमाम रिजवानी, वे उस दुआ में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक अजीब नुक्ता बतला दिया कि वुजू अगर मुकम्मल होगा तो नमाज मुकम्मल होगी, और नमाज मुकम्मल होगी तो अल्लाह की रजामंदी और खुशनुदी कामिल तौर पर हासिल होगी। ये तो हुजूर की बतलाई ही दुआ है, ये दुआ खुद हमारी तरबियत कर रही है, हमें बतला रही है कि हमें गोया हर चीज का एहतमाम करना है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि नमाजों के अंदर, नमाजों को ये जो ख्यालात वगैरह की बात चल रही थी, वैसे ये भी है, आपने हदीस में पढ़ा होगा कि अक्सर वसवसे जो हैं वो तहारत में कमी की वजह से, पेशाब के छींटों की वजह से, वो तो आप जो है नूरुल अनवार और उसूलुश शासी पढ़ते हैं, वहां से पढ़ते चले आते हैं ये चीज। तो बहरहाल ये वसाविस। अब हमारा हाल क्या होता है वुजू के मामले में, वुजू और तहारत के मामले में जो इत्मीनान ये कैफियत होनी चाहिए, और जिस तरीके से करना, वो हमारा अजान की आवाज सुनते हैं फिर भी बैठे रहते हैं, दरसगाहों में बैठे रहेंगे, अपने घरों में बैठे रहेंगे, घड़ी देखेंगे, अरे भाई ये जो अजान दिलवाई गई है 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले, वो भी खास मसलियतों के पेश नजर, कि अब 15 मिनट बाकी रह गए आप तैयारी कर लो। लेकिन नहीं, हम घड़ी तो हमें अल्लाह ने इसलिए दी थी कि हम उसके जरिए से अपने कामों को सही तरीके से इस्तेमाल करते, उसके बजाय मामला उलट गया, घड़ी से हम गलत जो है फायदा उठा रहे हैं। तो बाहर आ घड़ी, अभी तो देर है, अभी 10 मिनट, अब 5 मिनट बाकी रहेंगे तब घर से चलेंगे, अब मस्जिद पहुंचे तो ख्याल आया पेशाब करना है, अब गए वहां जहां बैतुल खला बने, वहां लाइन में लगे और पेशाब नंबर लगा, जल्दी जल्दी पेशाब पानी डाला, ऐसा होना होता है सब तैयार, वो कतरे वतरे आपके ताबे हैं, वो किसी उसके बगैर जो है अब खुद ब खुद एकदम ब्लॉक हो जाएगा मसला, समझा। पुराने लोग तो बेचारे जो है ना वो ढेले से खुश्क करते थे और कुछ चलते फिरते थे और कुछ दवा भी देते थे ना, ये भी करते थे, हमें तो किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, हमारे मसाने तो उनके मुकाबले में बहुत मजबूत। खैर दोबारा ये सब क्या है, ये इस तरह इस्तिंजा किया और आकर के फिर वुजू भी इसी तरह हमा हमी वाला, जोर से नल खड़ा यूं किया, देखा कि वहां तो दमाद खड़ी हो गई है, तो यहाँ वो देख रहे हैं और वुजू कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं और वो मंजर देखने जैसा होता है, ऐसे लोगों का शक्ल आप देखिए, लुत्फ उठाइए वो क्या उनकी शक्ल होती है, तो देख रहे, और फिर जो उठे भागेंगे आस्तीन यूं खींचेंगे, ये करेंगे लग। अब ये नमाज, ऐसी नमाज के बाद हम ये चाहें कि हमारा जी लगे उसमें खुशू खुजू पैदा हो, ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू जैसा मामला, हमने क्या क्या बाकी रखा है इस नमाज को जाया और बर्बाद करने के अंदर। तो हकीकत हजरत वाला मसीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल खुलफा में, कि आदमी को जमात से आध पौन घंटा पहले नमाज की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, हजरत फरमाते तो आदमी अपने वक्त पर जमात के साथ बराबर नमाज पढ़ सकेगा, इसकी तैयारियां होनी चाहिए, बाकायदा उसका एहतमाम होना चाहिए। हम कोई सफर करने वाले होते हैं तो ट्रेन के आने से कितनी देर पहले जाते हैं, टिकट लेना है, यूं करना है, फलाना करना है, वहां सारे अंदाज, और यहाँ कुछ भी। बहरहाल खैर मैं तो ये अर्ज कर रहा था कि नमाज के लिए फुकहा ने ये जो तफसीलात लिखी हैं, हमें पूरी नमाज उसके मुताबिक अपनी बनानी है, डालनी। एक मरतबा कर लो ऐसा, फिर देखो कि उसमें खुशबू पैदा होता है या नहीं, खुद ब खुद आ जाएगा। ऐसी नमाज आप बना लेंगे ना तो अल्लाह ताला उसमें खुशबू डाल देंगे, अगर उसमें जरा भी कमी रहेगी खुशबू नहीं आएगा। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, आप कोई बड़ी फैक्ट्री बड़ा कारखाना डालना चाहता है और उसके लिए मशीनरी आपने जापान से जर्मनी से मंगवाई, कोई बड़ा मिल का जो कारखाना है उसकी मशीनरियां जहाँ बनती है वहां से मंगवाई, तो वो मशीनरी जब आएगी तो उस मशीनरी को फिट करने के लिए वहां से इंजीनियर भी आएंगे, सब वो मशीनर आपने जो मकान तैयार किया है वहां सब फिट करेंगे, सब करने के बाद सब मशीनरी का फिटिंग मुकम्मल होने के बाद फिर वो बिजली का कनेक्शन जोड़ेंगे, सब फिट कर ली, बिजली का कनेक्शन जोड़ा, अभी मशीन चल नहीं रही, वो इंजीनियर कहेगा कहीं फॉल्ट है कहीं, यानी फिटिंग में कहीं कोई कमी रह गई है, अब वो तलाश करता है कहां था जी? पापता चला फुलाना स्क्रू इस तरह फिट करने का था, उसको यूं कर दिया, एक छोटा सा स्क्रू उसको जिस तरह फिट करना था उसके बजाय गलत तरीके से फिट किया, उसका नतीजा कि इतनी बड़ी मशीनरी करोड़ों की, सब ठीक है, सारे स्पेयर पार्ट्स के बराबर, सब फिटिंग बराबर, इस एक कमी की वजह से नहीं चली। मैं मिसाल से समझाना चाहता हूं कि हमें नमाज के लिए जो तफसील बताई गई है, अपनी नमाज को पूरे तौर पर उसके मुताबिक बनाओ, हम इसके पाबंद हैं, इसके मुकल्लफ हैं, और जब ये कर लेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही उसके अंदर डाल देंगे क्या खुशू, समझाया कि नहीं, आप उसमें जी लगेगा ख्याल। दूसरा ये है कि देखो कोई भी चीज होती है ना, तो ये आदमी का दिमाग जो है ना, हर उज़्वा को अल्लाह ने किसी न किसी काम के लिए बनाया है, आंखों को बनाया है काय के वास्ते, देखने के लिए, कान को बनाया है सुनने के वास्ते, जबान को बनाया है बोलने के वास्ते, तो दिमाग का काम ही है सोचना ख्याल, आपकी आंखें अगर खुली हैं तो आप सब चीजें नजर आएगी, खुद ही नजर आएगी, आप चाहें या न चाहें। हम आपके कान इस वक्त खुले हुए हैं, आपके कानों में आवाज, मेरी, मैं जो बात कर रहा हूं, जो आप जिस चीज को सुनने के लिए बैठे हैं वो भी आवाज आ रही है, और वहां सड़क पर से कोई ट्रक गुजर रहा है उसके हॉर्न की भी आवाज आ रही है, और भी कोई आवाज आ रही है। लेकिन आपका काम क्या है कि आप अपने मकसद को सामने रखिए, आप मेरी बात की तरफ तवज्जो दीजिए, और आप जो चीज लेना चाहते इन आवाजों में से, जिस आवाज को आप सुनना चाहते हैं, मेरी आवाज, ट्रक की आवाज को आप सुनना नहीं चाहते, चिड़िया की आवाज आ रही उसको इस वक्त आप सुनना नहीं चाहते, तो आप अपना ध्यान उधर देंगे तो आपका मकसद खुद ब खुद हासिल हो जाएगा। वो आवाजें ऐसा मालूम होगा जैसे आ ही नहीं रही है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, तवज्जो तो ध्यान देखने के अंदर भी, हम किसी को कोई चीज देखना चाहते हैं, जब आंख खोल करके उधर देखूंगा मैं तो आसपास की चीजें नजर तो आएगी, लेकिन मैं जिस चीज को देखना चाहूं मेरी कोशिश ये होगी मैं उसी को देखूं। इसी तरीके से नमाज के दौरान हमारी हमारा दिमाग किसकी तरफ मुतवज्जे रहे, नमाज के अल्फाज, नमाज के मानी, नमाज की चीजों की तरफ। फलसफे का कायदा है, अब तो फलसफे की किताबें भी नहीं रही हमारे मदरसों के अंदर, कि आदमी का नफ्स बैक वक्त दो चीजों की तरफ मुतवज्जे हो सकता, दो काम एक साथ नहीं कर सकता, आपका ध्यान एक चीज की तरफ है तो आप दूसरी चीज की तरफ, तो वो ध्यान हटाओ तो दूसरी तरफ ध्यान जाएगा। तो बहरहाल अगर आप पूरी तवज्जो से नमाज पढ़ रहे हैं तो दूसरे ख्याल आने का सवाल ही नहीं। मैं मिसाल दिया करता हूं, एक नौजवान है क्रिकेट का शौकीन है, रसिया आशिक पागल, अब अखबार के अंदर क्रिकेट की जो ये आई है खबर आई है वो पूरी वो अखबार लेकर के पढ़ रहा है। आप बताइए जिस वक्त तो वो उसको पढ़ रहा होगा वो किसी और चीज की तरफ उसका ध्यान होगा नहीं, वो अपनी पूरी सलाहियत, अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी सोच पूरी इसमें लगा, उस वक्त तो किसी चीज की तरफ उसका ध्यान नहीं। उसको पूछो कि भाई तू जब ये पढ़ रहा था कोई दूसरा ख्याल तेरे दिल में था नहीं, क्यों? इसलिए कि जितनी तवज्जो अल्लाह ने हमें दी है, सलाहियत दी है किसी चीज की तरफ तवज्जो करने के लिए, उसने अपनी उस पूरी सलाहियत को लगा दिया किस में, उस मजमून के अंदर, अब कुछ बचा ही नहीं कि वो दूसरी तरफ जावे। नल में सुराख हो तो पानी निकलेगा, नलका अगर पूरा बंद है तो जहां जाना है वहां जाएगा। तो ऐसे ही कुरान की तिलावत के लिए एक तवज्जो दरकार है। दौरान तिलावत हम अपनी वो तवज्जो 100% अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर किसी दूसरे ख्याल के आने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। लेकिन चूंकि हमें, हम तो जबरदस्ती कुरान लेकर के बैठे हैं, उसका जो शौक होना चाहिए, तलब होनी चाहिए, उसमें कमी है, उसका नतीजा यह है कि हमारा ध्यान पूरा नहीं, आधा है, 50% है। तब 50% जो बचाना कहां दिमाग में, वो अब अपनी अपना महल तलाश करेगा, वो किसी और चीज में मशगूल हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये जो ख्यालात वगैरह आते हैं उसकी बुनियाद ये है। तो हकीकत तो ये है कि हमें अपनी नमाजों पर मेहनत करनी थी और उसको इस तरह अदा कर, अब ये मेहनत करते रहें और उसके बाद भी अगर कोई ख्याल आए तो बाद मरतबा बाद ख्यालात हालात के ताबे भी होते हैं। आदमी हालात की वजह से जो है वसाविस का शिकार होता है, तो वो तो अल्लाह ताला की तरफ से भी माफी है। कुरान करीम में जहां दुश्मन के मुकाबले सलातुल खौफ का तरीका, वैदा दरतुन फिल अर्द, हाँ तो उसमें वैदा दरतुन फिल अर्द, सलात, और फिर आगे जो है उसमें फिर सलातुल खौफ का तरीका बताया गया आगे, और सलातुल खौफ का तरीका बता चुकने के बाद आगे बारी ताला फरमाते हैं, फैजा कदैतुम सलात फज़कुरुल्लाह क़ियामं वक़ूदं वअला जुनूबिकुम फैजत फैजत मअनंतुम फ़अक़ीमुस सलात। ये फैजत मअनंतुम फ़अक़ीमुस सलात का क्या मतलब? ये सलातुल खौफ जब पढ़ लो तो उसके बाद भी याद, अल्लाह की याद में मशगूल रहो, खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे, और जब तुमको इत्मीनान हासिल हो तो अकीमुस सलात, इकामत सलात कहते हैं नमाज का पूरा हक अदा कर। वह देखो हम जिन हालात का शिकार थे दुश्मन के मुकाबले और दुश्मन के हमले के अंदेशे और डर की वजह से, ऐसी हालत में आदमी 100% नमाज में ध्यान रहे ये मुश्किल है। अल्लाह ताला ने भी हमको इसका मुकल्लब बनाया नहीं। जब ये हालात हट जाए तो एक आदमी है जो है वो उसकी बीवी का ऑपरेशन हो रहा है या कोई और घर के बाहर जो है दुश्मन जो है हमला के लिए तैयार खड़े हैं, कोई दरवाजा खोलो अभी हम तुम्हारी जान से मार देंगे, हम धमकियां दे रहे हैं, ऐसी हालत में नमाज का वक्त आया फिर भी वो नमाज पढ़ रहा है, पढ़ेगा नमाज। लेकिन आप बतलाइए कि जिन हालात में वो नमाज पढ़ रहा है क्या उसका 100% दिल नमाज में लगेगा? अल्लाह ताला भी इसको पाबंद नहीं बना जितना। ऐसी हालत में हम खाना भी खाएंगे तो कैसा खाएंगे? वहां 100% ध्यान खाने में, बस वो इसलिए जरूरत पूरी कर रहे हैं कि खाएंगे नहीं तो इजाफा, खाना तो खाना, जरूरत की चीज है पूरी कर। ऐसी हालत में पेशा वगैरह करें, जो भी जरूरत हम पूरी करेंगे इन मुखालिफ हालात में उसी तरह नमाज को भी अल्लाह ने इसी की तरह हमें पाबंद नहीं किया। लेकिन हमारा हाल यह है कि इत्मीनान वाली हालत में भी सारे काम तो इत्मीनान से करते हैं और नमाज इत्मीनान से नहीं पढ़ती, यह है हमारी कमजोरी। हज़रत मुफ्ती तकी साहब ने डॉक्टर अब्दुल हय आरिफी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बड़ी अच्छी अजीब मिसाल दी। एक रिटायर आदमी है, रिटायर है, उसको बहुत बड़ी पेंशन मिल रही है, अच्छी उसके पास बैंक बैलेंस है, बंगला है, कोई फिक्र नहीं है उसकी औलाद, वो भी वेल सेट है, सेट नहीं वेल सेट सब कुछ। अब वो आदमी दीनदार है, क्या होगा, वो नमाज का वक्त आने से 1 घंटा पहले घर से जाता है कहाँ, मस्जिद जाकर वजू करता है, तहियतुल मस्जिद पढ़ता है, तहियतुल वजू पढ़ता है, अजान होती है फिर इत्मीनान से सुन्नतें पढ़ता है, जमात के साथ नमाज पढ़ के फिर इत्मीनान से सुन्नतें बादिया अदा करके फिर दुआएं मांग करके 1-1.5 घंटे के बाद नमाज पढ़ के घर आता है। एक दूसरा आदमी बाल बच्चों वाला नौजवान, उसके घर में 10 बच्चे हैं, बीवी है, घर में कोई इसके बाद बैलेंस नहीं है, चाय की लारी चला रहा है मस्जिद के बाहर, अब वहां क्या है, या जो है पाव भाजी की लारी चला रहा है, अब लोग उसके पास खरीद अजान, वो अब लोगों को दे रहा है बेचा, इतने में अजान हुई लेकिन वो है नमाजी, उसको फिक्र है काई की अपनी नमाज की, और बस वो घड़ी बार बार देख रहा है कि अजान हो गई, अभी अब जमात होने वाली, तैयार जमात करीब आ गई, वो जल्दी जल्दी ग्राहकों को निपटा रहा, फिर भी दो चार ग्राहक रह गए तो भी कभी ठहरो मैं आ जाऊँ, वो कपड़ा डाल जल्दी से मस्जिद में जाएगा, वजू करेगा दो रकात जो दो चार रकात जो भी पढ़नी है नमाज पढ़ के वापस आएगा। अब इसकी नमाज वैसे देखने के एतबार से तो है, लेकिन उसने जिन हालात में नमाज पढ़ी वो है देखने। अब वो विटाए आदमी की नमाज के साथ कोई उसका मुकाबला करके यूं कहे तो हजरत डॉक्टर आरिफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रूहानियत आपको किसमें ज्यादा न उसमें, अरे वो अगर इत्मीनान से नमाज पढ़े, रिटायर आदमी इत्मीनान से नमाज नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, इसको तो पढ़नी पढ़नी, ये पढ़ रहा है देखो, ये है काबिल रश का आदमी के ऐसे मुखालिफ हालात में भी नमाज नहीं छोड़ी। ये तालीम, मैं आपको ये सारी मिसालें दे करके एक चीज की बतलाना चाहता हूं कि हमें नमाज का एहतमाम होना चाहिए। तो बहरहाल ये जो ख्यालात वगैरह हैं, तो एक तो है कि नमाज के लिए मेहनतें करो, उसके बाद भी ऐसे हालात की वजह से ख्यालात आए तो वो तो आते ही, वो तो आने ही, वो तो उन हालात में तो हम नमाजी का कोई भी काम इत्मीनान से करेंगे, खाना होगा तो उसमें भी वही कैफियत रहेगी, लेकिन जरूरत पूरी कर रहे हैं, फरीजा अदा कर रहे हैं। तो बहरहाल इसके बाद भी अगर ख्यालात आवे तो उसको दूर करने के लिए तदबीरें, भाई नमाज के जो अल्फाज हैं उसकी तरफ ध्यान दो, नमाज जो आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, उसके मानी की तरफ ध्यान दो, तो धीरे धीरे ये ख्याल, उसके बावजूद भी इन ख्यालात से नजात न मिले तो उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, उनका नाम मत लो, अपना काम करो। यानी ये ख्यालात, हजरत थानी रहमतुल्लाह उसको मिसाल देते हैं कुत्ते की, एक कुत्ता होता है, एक मुसाफिर जा रहा किसी मोहल्ले के पास से गुजरा, कुत्तों ने देखा, कुत्ते आ गए भौंकते हुए उसके पास। अब ये मुसाफिर अगर यूं सोचे ये भौंक रहे हैं, ये उसको दूर करने के लिए कुत्ते ऊपर चढ़ना चाहते हैं, ये यूं हाथ से डंडे से यूं करना चाहता है, वो ना कुत्ते हट रहे हैं न ये आगे, ये यूं सोच रहा है जब कुत्ते जाएंगे तो मैं अपनी राह लूंगा, कुत्ते जाने वाले भी नहीं है और वो आगे बढ़ने वाला भी नहीं, सलामती की बात है कि कुत्तों को भौंकने दे, अपनी मुंडी नीची करके चलता रहे, थोड़ी देर के बाद एक मुकर्रा जगह आएगी, वहां कुत्ता तो खुद ही रुक जाएगा। ये भी रुकने का उसका मामला भी अजीब, कभी कार में आते हैं कुत्ता दौड़ा हुआ था, ऐसा मानो तो अभी चढ़ जाएगा कार के ऊपर, और वो दौड़ रहा है कार के, और एक जगह आती है ऐसे झटके के साथ खड़ा होता है जैसे किसी ने पकड़ के खड़ा कर दिया, हिकमत समझ में नहीं आती इसकी। मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि अब वो अपना काम कर रहा है, हमें सबक ये देना है कि आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप यूं सोचेंगे कि वो जाएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, न वो जाएगा ना आप आगे बढ़ेंगे, आपकी राह खोटी होगी, बस आप करते रहिए वो करता रहे। तो ये ख्यालात जो है उनका इलाज यही है कि उनकी तरफ ध्यान। देखो एक और चीज भी हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाद लोग क्या करते हैं कि ध्यान नहीं दिया, चार दिन के बाद आकर कहते हैं मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो जाते नहीं। अरे भाई ध्यान मत दो, ये है फकत, जावे के न जावे इस फिक्र में मत रहो, ये ध्यान न देना जो है खुद मकसूद भी जात है, उसकी वजह से ख्याल जाएंगे ये गारंटी आपको हमने दी नहीं है। एक आदमी बीमार होता है ना, तो बीमार होता है दवा खाता है, तो दवा काय के लिए करता है, शिफा के लिए, बीमारी दूर करने के लिए। अब किसी डॉक्टर के पास गया, दवाई की 8-10 रोज बीमारी नहीं गई तो वो दवा छोड़ करके दूसरे डॉक्टर के पास जाए, क्यों? दवा मकसूद भी जात नहीं थी, वो तो तंदुरुस्ती के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, तो जब तंदुरुस्ती हासिल नहीं हुई तो हम दूसरा आए। यहां तो इन ख्यालात की तरफ ध्यान न देना मकसूद भी जात, यही इलाज। यानी गोया आप अपना काम करते रहिए, उनकी तरफ ध्यान न दीजिए, उसके बाद भी ख्यालात आते हैं तो ये मत सोचो क्यों आते हैं, जब मैं तो ध्यान नहीं देता फिर भी मौसम ख्याल आते हैं। अरे आने दो, आपका काम, हमने एक चीज बता दिया आपको कि आपको उधर ध्यान देना, आप अपना काम करते रहो, बस ख्याल आते रहे तो भी उसकी परवाह मत करो। बहरहाल कहने का हासिल यह है कि ये ख्याल जो नमाज के अंदर आते हैं और वैसे उसके बाद भी अगर आवे तो उसकी वजह से हमारी नमाज का कोई सवाब कम होता, किसी भी किताब में, तालीमुल इस्लाम में, दीनी तालीम के रसायल में, रिश्ते समर में और बड़ी किताबों में, फतावा हिंदिया में कहीं लिखा हो कि भाई इस तरह के ख्याल आएंगे तो सवाब कम हो जाएगा तो बता दो मुझे, मैंने तो बहुत तलाश किया, मुझे कहीं मिला नहीं। समझाया कि नहीं? नमाज फासिद, नमाज को फासिद करने वाली चीज़ें सब बता दिए फुकहा ने किताबों के, इससे नमाज फासिद होगी, इससे नमाज मकरूह होगी, इससे ये होगी। लेकिन नमाज के फासिद करने वालों में, नमाज के को मकरूह करा देने वाली चीज़ों में, चाहे वो कराहत तहरीमी हो या तंजी, कहीं भी उसका तज़किरा है नहीं। फिर भाई काय को फिक्र करते हैं, फिर भी फिक्र लिए बैठे हैं। तो ये वही बात हुई जो हज़रत थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो चीज़ गैर इख्तियारी है उसके पीछे पड़ो मत, वरना अपने आप को बर्बाद करके रहोगे। ये शैतान का और नफ्स का एक धोखा है कि आदमी को गैर इख्तियारी चीज में डाल देता है उसकी, मतलब नमाज रोना नहीं आता, रोना नहीं आता। अरे भाई रोना आवे तो बहुत अच्छा, नहीं आवे तो काय को फिक्र करते हो, कहीं है कि रोना आवे तो नमाज तुम्हारी कबूल होगी और दुरुस्त होगी वरना नहीं होगी। रोना एक गैर इख्तियारी चीज है, वो लिखा है कि वो अहो महमूद, लेकिन मकसूद नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो हमें इसको देखना है। तो ये अब बाल लोग इसी चीज को लेकर बैठ जाते हैं और जब गैर इख्तियारी है तो जिंदगी भर कभी खुद ब खुद तो आने वाली है नहीं, नतीजा ये होगा कि परेशानी उठाएगा। बहरहाल कहने का हासिल ये है कि नमाज से मुतालिक ख्यालात के जो हैं उससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारी तदबीरें जो बताई गई है वो आप कीजिए और उसके बाद भी न जावें तो अल्लाह के फैसले पर राजी रहिए। अल्लाह ताला इसी तरह की नमाज हमसे पढ़वा कर कबूल कर रहे हैं, समझा है कि नहीं? तो हम अल्लाह ताला इसी तरह की नमाज, उसमें भी हिकमतें हैं कहीं, ऐसा शायद इसलिए हो कि अगर हमारी नमाज वैसी बहुत ज़ोरदार बन जाती, ऐसी नमाज पढ़ के भी पता नहीं कितनी मखलूक को हम हकीर समझते हैं, और वैसी अगर नमाज मिल जाती तो शायद हजरत जिब्रील भी तुम्हारी निगाहों से उतर जाएंगे। इसलिए भाई वो हकीकत तो यह है कि अल्लाह की पिदर्रा असल बिस्यारस लेकिन पिसर गर्मी दारस। शेख सादी ने गुलिस्ता में कहा है कि बाप के पास शहद तो बहुत है लेकिन बेटे के मिजाज में गर्मी है। अल्लाह ताला चाहे तो ये कोशिश के बाद दे, लेकिन इसके मेहनत के बाद भी नहीं तो अल्लाह के फैसले पर राजी। दोबारा ये तो नमाज के अंदर आने वाले ख्यालात से मुतालिक बात थी, और भी बहुत सारी चीज़ें कहनी थी लेकिन आज अब वक्त तो भी आज आखिरी दिन है। एक चीज़ एक मलफूज है हजरत मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खलफा में से थे, सब जानते हैं उनको। तो उनकी एक नसीहत है, एक अहम नसीहत हजरत ने अजीब लिखी है, वो ख़ास तौर पर नसीहत के नाम से इसको शाये किया है। फरमाया हजरत शाह वसीउल्लाह साहब फरमाया कि अब इतने दिनों के बाद इस बुढ़ापे में, हजरत फरमाते अब इतने दिनों के बाद इस बुढ़ापे में जबकि किसी चीज की तहसील का वक्त बाकी नहीं रहा, अरे बुढ़ापा आ गया अब तो ताकत भी नहीं रही, ये बात समझ में आई थी क्या आई कि इंसान को किसी कमाल के हासिल करने से जो चीज रोकती है वो उसका किबरा और आर है, वो उसका किबरा और आर है, क्योंकि यही चीज उसको किसी कामिल के आगे झुकने से मना करती। इसलिए कमाल तो कामिल के पास से मिलेगा और उस कामिल के पास झुकेंगे तो आपको मिलेगा, तो यह आर आप उसको वहां झुकने से रोकता है। और वरना हर जमाने में अहले कमाल रहते हैं जिनसे कमाल हासिल किया जा सकता है, मगर इसी आर और इस्तकबार की बिना पर उनके सामने झुकते नहीं, इसलिए कुछ हासिल भी नहीं होता, कोरे के कोरे ही रह जाते हैं। आदमी जब अपनी खुदी और तकब्बुर को छोड़ता है तब कुछ हासिल होता है। हर कुजा पस्तीस आप आजा रहो, जमीन नशेब वाली हो, पानी उधर जाएगा, ऊंची जमीन की तरफ पानी जाता नहीं। मैं हजरत फरमाते हैं, मैं हजरत अहले इल्म को खुसूसन इस जानी मुतवज्जह करना चाहता हूं कि आज उलमा और तलबा को कोई कमाल जो नहीं हासिल हो रहा है तो उसकी वजह यही उनका आर और तकब्बुर है, यही उनकी राह मारे रहता है। उसको अगर समझ लें और हिम्मत करके इस आर को छोड़ दें तो कमाल के दर्जे को पहुंच सकते हैं। चिरांचे जिन लोगों को कमाल हासिल हुआ है वो अपने को मिटाने और किसी के आगे खुद को गिराने और अपने किब्र व आर को खत्म करने से ही हासिल हुआ है। अरे यार तो ईमान से भी रोकता है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान माँ बाप के घर पैदा किया और ईमान हमको मुफ्त में मिल गया। खुदा ना खास्ता काफिर माँ बाप के घर पैदा होते और कुछ पढ़ने पढ़ाने के बाद ईमान की हक्कानियत हमारे सामने जाहिर होती, फिर भी ईमान लाते या न लाते कोई गारंटी थी। अबू तालिब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जिन्होंने पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की, दुनिया से बगैर ईमान के रुखसत हुए। कौन सी चीज रुकावट बनी? आप। बुखारी शरीफ में वाकया है कि जब अबू तालिब की मौत का वक्त आया, मक्का मुकर्रमा में ये बात फैली कि अबू तालिब की आखिरी घड़ियां हैं। अबू जहल को पता चला, अबू जहल ने अब्दुल्लाह इब्न अबी उमैया, ये अब्दुल्लाह इब्न अबी उमैया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई हैं, अबू तालिब के भांजे होते हैं। वो उस वक्त अभी गैर मुस्लिम थे, बाद में जो है फतेह मक्का के मौके पर ईमान लाने की अल्लाह ने उनको सआदत अता फरमाई। तो अबू जहल अब्दुल्लाह इब्न अबी उमैया को अपने साथ लेकर अबू तालिब के घर पहुँचा के कहीं अखीर वक्त में आकर भतीजे उनसे कलमा ना पढ़वा लें। जहां वो लेटे हुए थे वहां दो आदमियों के बैठने की जगह थी, ये जाके वहां बैठ गए ताकि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवे भी, तशरीफ लावे भी, तो आपको इत्मीनान से बात करने का मौका न मिले। बैठ गए। अब इस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता चला, आप भी तशरीफ लाए, वहां बैठने की जगह नहीं, आप सलासम खड़े रहे और खड़े खड़े नबी करीम सलासम ने अबू तालिब से कहा, चचा कलमा पढ़ लीजिए, कुल कलेमतन अहाद जो बेकल अहा इंदल्लाह, बुखारी के अल्फाज कि कलमा पढ़ लो, उस कलमे की वजह से तुम्हारे लिए अल्लाह के यहां मैं कुछ लड़ लूंगा, दलील कर लूंगा, सिफारिश कर सकूंगा। इसलिए कि कलमा हो तो बात बनती है ना। अल्लाह ताला ने शर्त लगा दी है, क्या? कि जन्नत बगैर ईमान के मिलेगी नहीं, बगैर कलमे के नहीं मिलेगी। तो शर्त तो पूरी करनी पड़ेगी, उसके बगैर तो बात बन नहीं सकती। मैं मिसाल दिया करता हूँ कि भाई किसी सरकारी जो है डिपार्टमेंट में कोई ऊंची जगह खाली हुई और वहाँ हुकूमत ने इश्तिहार दिया कि भाई ये जगह खाली है, जो आना चाहें ये उसके लिए शर्तें हैं, उनके पास फला फला शहादतें सर्टिफिकेट होने चाहिए और ये तजर्बा इतना होना चाहिए, दरख्वास्त दें। दरख्वास्तें दी लोगों ने, आपके भतीजे ने भी दरख्वास्त दी उस असामी के लिए, और अब वो आपसे आकर के कहता है, चचा वो फला इश्तिहार आया है हुकूमत की तरफ से फला इसके लिए असामी के लिए, और उसका जो इंटरव्यू लेने वाला बड़ा ऑफिसर है वो आपका पक्का दोस्त है, मैंने भी दरख्वास्त दी है, आप जरा मेरी सिफारिश कर देना, किससे? उस ऑफिसर से, ताकि वो मुझे चुने। तो चचा पहले आपसे पूछेंगे, बेटा ये असामी जो है जगह खाली हुई है उसके लिए जो 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 सर्टिफिकेट जो सलाहियतें मतलूब हैं वो हैं? क्या वो सर्टिफिकेट तो नहीं है चचा? वो भतीजा आपको कहता है, चचा वो सर्टिफिकेट तो मेरे पास नहीं है। तो आप कहेंगे, जब तेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं क्या सदर जमहूरिया भी सिफारिश करेगा तो ये होता तुझे मिलने वाला नहीं। सीधी बात। तो अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए कलमा शर्त करार दिया, कलमा नहीं होगा तो फिर कोई भी हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश भी वहां कहां कबूल हो सकती। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू तालिब से कि कलमा पढ़ लीजिए, बात का मसला फिर आसान हो सकता है। अबू जहल क्या कहता है, अबू तालिब मक्के की औरतें और बच्चे क्या कहेंगे कि आग से डर गया और कलमा पढ़ लिया। देखो ये आग, आग आग से क्या कहेंगे औरतें, बातें करेंगी आखिरी वक्तों में। पूरी जिंदगी तो बाप जो है बाप दादा के धर्म के ऊपर रहे और आखिरी वक्त के अंदर आग के डर से कलमा पढ़ लिया। चुनांचे रिवायतों में है कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा और ये जुमला कहा, क्या अख्तारुन नार अलल आर, आर के मुकाबले ये मक्के की औरतें ऐसी बातें कर रहे कि आग से डर के कर, ये मुझे गवारा नहीं, उसके मुकाबले में जहन्नम में जाना मंजूर है। नहीं पढ़ा कलमा, वो दुनिया से बगैर ईमान के गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी हसरत थी कि जिन चचा ने जिंदगी भर मेरी हिमायत की वो ईमान से, तो अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई, इन्नक ला तहदी मन अहबबत वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, ये नबी आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो मैं ये अर्ज कर, ये आर हम में, आर हम में कोई ऐसा नहीं जो आर से बचा हुआ हो। वो तो ईमान के मामले में उन्होंने आर इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि ईमान अल्लाह ताला ने हमको मुफ्त में दे दिया, इसलिए। लेकिन बहुत सारे मसले दीन की, बहुत सारी बातें उनके ऊपर अमल के मामले में मैं और आप भी शिकार होते हैं, काय का आर का। बेटे की शादी कर रहे हैं, सादा सादगी के साथ शादी करने का हुक्म है, नमूने हैं सहाबा के, हुजूर के, सब हमारे इल्म में हैं, जानते हैं, सारी दुनिया के सामने बयान भी करते हैं, लेकिन जब वक्त आया तो उस पर अमल क्यों, लोग क्या कहेंगे, वो मक्के की औरतें क्या कहेंगी, लोग क्या कहेंगे, मौल साहब लोग क्या कहेंगे। इसीलिए ईमान की सेहत के लिए सबसे बड़ी अलामत ला खाफून फिल्लाह लौमत लाए, अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह, वो है पक्का। वरना मैं पूरी जिंदगी बुखारी का दर्स दूं और जिंदगी के किसी मरहले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करने के मामले में ये सोचूं कि लोग क्या कहेंगे, समझ जाओ कि कमजोरी है। मां बुखारी काम नहीं देगी, सीधी बात है। यही इम्तिहान होता है आदमी का। तो कहने का हासिल यह है कि ये आर, हजरत ने फरमा आर में ये मत समझना हम और आप आर में मुब्तला नहीं है, हम और आप भी बेशुमार मसाइल के अंदर आर का, बल्कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने अजीब बात फरमाई कि हम जो दीनदारी का लबादा ओढ़े हुए हैं ना, यानी दीनदारी की शक्लो सूरत इख्तियार किए हुए हैं, इस शक्लो सूरत की वजह से अल्लाह ने बहुत से गुनाहों से हमको रोक रखा है, अल्लाह के डर से नहीं, अल्लाह के डर से। दाढ़ी है, कुर्ता है, ये है। अब मैं सिनेमा देखने जाऊं कहीं किसी टाकीज में तो पहले सोचूंगा ना, लोग मुझे वहां जाते हुए देखा, अरे ये कौन है, कोई दाढ़ी वाला जा रहा है गया। ये लिबास वहां जो नहीं गया, क्यों नहीं गया, इसकी वजह से, अल्लाह के डर की वजह से नहीं। यहां भी आर लेकिन ये आर गुनाह से बचा रही, चलिए अच्छी बात। कहने का हासिल ये है कि ये आर जो है ना, ये आर बहुत खतरनाक चीज है। तो दीन के मौर अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। हमारे हजरत शेख एक वाकया बहुत बयान करते थे, कीमियागर का वाकया, आप सब खुश। तो उसमें यही बात, हजरत कहते भाई देखो आदमी अपने आप की ये इसको कुर्बान करेगा तो कुछ हासिल होता है। हजरत जो है वो बड़े रगबत से, बड़े शौक से ये वाकया बयान करते थे, बड़े लुत्फ ले लेके। आज भी वो मंजर मेरी निगाहों के सामने कई मरतबा हजरत की जबान से ये सुना, हजरत अंदर वो जो जबान हजरत वो मगरीबी यूपी वाली खास अंदाज से, वो उसी अंदाज में हजरत बोलते भी थे। वो वाकया सुनाता हूँ, एक अजीब किस्सा बड़ी इबरत का मैंने अपने वालिद साहब से कई मरतबा सुना। एक बादशाह था, उसको कीमिया की दुत थी। कीमिया एक ऐसा तरीका कि जिसके अंदर आदमी लोहे को क्या बना देता है, सोना बना देता है। ये बुजुर्गों ने कहा है कि लोहे को सोना बनाना क्या कमाल की बात है। किसी वहन वो दिल जो अल्लाह से दूर हो उस पर मेहनत करके उसको अल्लाह से जोड़ देना, ये है कीमिया। जिसके अंदर जुल्मत भरी हुई है उस जुल्मत को नूर से बदल देना, ये है कीमिया। मौलाना रूम ये फरमाते हैं तो भाई ये कीमिया क्या है, हकीकी कीमिया तो ये है। तो उसको कीमिया की दुत थी। और ये तो सभी जानते हैं कि जिसको कीमिया का मर्ज पड़ जाता है उसकी अकल और होश शतरंज के खिलाड़ियों से भी ज्यादा खोई जाती है। मैं कहा क्रिकेट के चाहने वालों से भी ज्यादा खोई जाती है। इस वक्त यूं कहां जा सकता है, इसलिए शतरंज को तो आप लोगों ने बहुतों ने देखा भी नहीं होगा। मैंने अपने कई दोस्तों को देखा जिनको इसका चस्का था, जब उनका रास्ते में कहीं साथ होता वो कदमों पर निगाह कभी इधर कभी उधर देखते जाया करते, और जहां कहीं सुबह हो जाता वहीं खड़े होकर और बूटियों को देर तक मल मल कर सूंघते सूंघ। बादशाह भी इसी फिक्र में हर वक्त रहता था, वजीरों का नातका बन कर रखता। एक वजीर ने कहा, हुजूर इतने मुतफक्किर रहते हैं, हुजूर की सल्तनत में फलां सक्का, पहले जमाने में ये जो है ना वाटर वर्कस का निज़ाम नहीं था, पाइपलाइनें नहीं थी, घर बैठे बैठे पानी पहुंचता नहीं था, बल्कि कुओं और नहरों से मशकीज़ों में पानी लाकर जो है पानी पहुंचाने वाले पहुंचाया करते थे। उसको सक्का बिश्ती कहते हैं, उसको हमारे सक्का वो हुआ करते, वो घरों में पानी पहुंचाते थे, इसका उजरत लेते थे उसकी। तो फला सक्का जो फला जगह रहता है बड़ा माहिर है, उसे खूब बनानी आती है। बादशाह को बड़ी हैरत हुई, कहने लगा हमारी सल्तनत है उसका जानने वाला और हम इतने परेशान। चार संतरी भेज दिए कि उस सक्के को पकड़ लाओ। सक्का पेश हुआ। अब सक्के का जो जाहिरी ये होता है हुलिया, वो उसी तरह था, कपड़े फटे हुए, लंगोटा बंधा हुआ, बदन पर बजाय कुर्ते के एक घाड़े की कमरी बहुत फटी हुई। वो कुर्ता जो कमर तक आता है उसको कमरी कहते हैं उर्दू वाले, अरे नीचा ना हो ज्यादा तो कमरी। तो बादशाह को उसकी सूरत देखते ही पहले तो नफरत हुई, उससे पूछा तुझे कीमिया आवे, हजरत रहमतुल्लाह खास मौली अंदाज तुझे कीमिया आवे क्यों बोलते थे। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर तो बादशाह सलामत हैं, समझदार हैं, दुनिया के हाकिम हैं, अगर मुझे कीमिया आती तो मेरा ये हाल होता जो हुजूर देख रहे हैं, मैं भी कोई महल ऐसा ही बनाता जैसा हुजूर का है। बात माकूल थी, बादशाह की भी समझ में आ गई, छोड़ दिया। और उस वजीर को बुलाकर डांटा जिसने कहा था कि उसको कीमिया आती है। वजीर ने कसम खाई कि हुजूर मुझे खूब तजरबा है, उसे खूब आती है। बादशाह ने कहा गया, आपने उसको हासिल करने के लिए जो तरीका इख्तियार किया वो सही नहीं है। तो बादशाह ने सल्तनत का इंतजाम वली अहद, बादशाह के बाद जो आने वाला होता है तख्ते हुकूमत पर, वली अहद के सुपुर्द किया, बदन पर बबूत मला ताकि पहचाना ना जाए, और उस वजीर को साथ लेकर सक्का के घर पहुंचा चुपके से। जब उसने घर का निशान बता दिया, वजीर को चलता कर दिया। हुब का शय योमी व युसिम, चीज की मोहब्बत आदमी को अंधा बहरा कर देती है। जब वो सक्का घर से निकला, ये बैठा रहा बादशाह वहीं बैठा, जब वो शाम को पानी डालने जाने लगा तो उसके साथ हो लिया वो बादशाह। बादशाह ने भी अपनी शक्ल से तो वही आम आदमी जैसी बना ली थी। कहने लगा, बड़े मियाँ आप तो बहुत बुढ़े हो गए हैं, आपको तो बड़ी दिक्कत होगी, मैं तो घर से फालतू हूँ, मारा मारा फिरता हूँ, अगर आप मुझे कुछ ठिकाने बता दें तो मैं ही घरों में पानी डालकर आया करूँ। सक्के ने कहा, नहीं भाई मेरी तो रोजी इसी में, तू अपना काम कर। कहने लगा, बड़े मियाँ तुम मुझे कुछ अच्छे ही बहुत लगो, मैं तो तुम्हारी खिदमत में रहना चाहता हूँ, तुमसे कुछ मांगने का नहीं, न मुझे रोटी चाहिए न और कुछ। शाम को सक्के ने जब वो रोटियाँ मांग कर लाया, बादशाह को तवाजु, बादशाह की तवाजु की, मगर उसने इनकार कर दिया, उसका तुम भी खाओ कहा सक्के ने, उसने इनकार किया, मुझे बिल्कुल भूख नहीं, गमजदा हूँ, परेशान हूँ, मैं तो कई कई दिन का फाका करता हूँ। सक्के ने बड़े इसरार से दो चार लुकमे खिलाए। अब यहाँ फिर हजरत फरमाते, अदा अपनी मजलिस में उलमा को ख़ास तौर पर ताकीद करते थे कि भाई अल्लाह के दीन का काम करो, वो ज़ात जो किसी अपनी मखलूक में से जो उसके दुश्मन हैं काफिर हैं उनको भूखा नहीं रखती तो वो तुमको काहे को भूखा रखेगी। इसी को हजरत फरमाते हैं, या फिर मैं वही कहूँगा जो अभी मामू उस्मान के किस्से में कह के आया, एक सत्ते की गैरत ने तो तकाजा ना किया कि एक आदमी उसका काम करे और वो बगैर उसके रोटी खा ले, मगर हम लोगों को इसका बिल्कुल यकीन नहीं आता कि हम इखलास से अल्लाह का काम करें और वो हमें भूखा मार दे। अलबत्ता इतना फ़र्क है कि सक्का आलिमुल गैब नहीं था, इसलिए धोखे में आ गया। मालिक यानी अल्लाह आलिमुल गैब है, उसे हकीकत हाल मालूम है, उसे मालूम है कौन वाकई इखलास से मालिक का काम करता और कौन धोखे से कर रहा। गलत, बादशाह ने सक्के की बहुत खिदमत की, दिन भर उसका पानी भरता, रात को जब सक्का लेटता उसका खूब बदन दबाता, हट्टा कट्टा जवान कवि सक्के को, तो सक्के को भी 5-7 दिन में वो मज़ा आया और लुत्फ तो आ ही गया। 2-3 महीने सक्के ने खूब टटोला, खुशामत की, कुछ खा ले, कुछ पैसे मुकर्रर कर ले। बादशाह ने कहा जी मियाँ, मुझे मजदूरी करनी होती तो दुनिया में बहुत मजदूरियाँ, मुझे तो तुम बहुत ही अच्छे लगते हो, मैं तो रास्ते में बैठ गया था, तुम्हारी सूरत मुझे कुछ बहुत ही अच्छी लगी। अगला शेर तो मैंने अपने वालिद से नहीं सुना मगर वाकई के मुनासिब था, याद आ गया। गिरे मेरी नजरों से खूबान आलम, पसंद आ गई तेरी सूरत कुछ ऐसी, देरो हरम में रोशनी शमशो कमर से हो तो क्या, मुझको तो तुम पसंद हो अपनी नजर को क्या करूं, गोरे काले पर नहीं मौको, दिल के आने के तरीके निराले हैं, दीदे लैलाल के लिए दीदे मजनू है जरूर, मेरी आंखों से कोई देखे तमाशा उनका। गलत, बादशाह ने वो मोहब्बत के जज्बे दिखाए कि सक्का भी सोच में पड़ गया कि ये बुढ़ापे में आशिक ज़ार कहाँ से पैदा हो गया। कभी कहता अब्बा जी लुंगी बांध लीजिए, कपड़े दे दो, मैं धो लाऊं। अरे भाई मैं तो खुद ही धो लूंगा। अजी तुम बुढ़ापे में कहाँ तकलीफ उठाओगे, उनमें जुएं ढूंढता, खूब पटरे पर छींच छींच कर साफ करता, कुछ पैसे तो जरूर साथ ले लिए होंगे, बुड्ढे को झांसा देकर कुछ इधर उधर से खा लेता, मगर बुड्ढे के सामने अपने फकर फाका और जौदा का जोर दिखाता। 4-5 महीने बाद बुड्ढे ने कहा अरे लौंडे मुझे कीमिया आवे। बादशाह ने भी मुझसे पूछा था, मैं अब बादशाह के नाम गाली देकर उसको भी इनकार कर दिया, तुझे बताऊंगा। बादशाह की जान में जान तो आ गई मगर जबान से इतनी सख्ती से इनकार किया कि कीमिया की ऐसी तैसी, मुझे क्या करना, मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत ने मार रखा। 8-10 दिन तक सक्का इसरार करता रहा, बादशाह इनकार करता रहा। एक दिन बुड्ढे ने कहा मैं बुड्ढा हो गया, ये इलम मेरे साथ ही चला जाएगा, किसी और को तो मैं बताने का नहीं, तुझे जरूर बताऊंगा। भाई मोहब्बत से मोहब्बत होती है, मुझे भी तुझसे मोहब्बत हो गई, अगर से तूने मुझे अपना हाल तो बताया नहीं, कौन है कहाँ से आया। अब बाजी क्या अपना हाल बताऊँ, लावारिसी हूँ, यूं ही मारा मारा फिरता हूँ, घर भी भूल भाल गया कहाँ था, अब तो तुम ही अपना बेटा बना लो। गरज में तो आदमी गधे को भी बात बना देता है, ये तो बहरहाल आदमी था। एक दिन सुबह ही सुबह सक्का बादशाह को लेकर जंगल गया और 25-30 बूटियां उसको खूब दिखाई और उसी से तुड़वाई और घर आकर उसी से कीमिया बनवाई। बादशाह तो उस पर मर ही रहा था, खूब गौर से देखा और रात ही को भाग गया। अगले दिन सक्का माथा मलता रह गया, कमबख्त बहुत ही धोखेबाज था, बेईमान, यूं कहे था मुझे तुझसे मोहब्बत है, अनजान आदमी से तो कभी मुंह न लगाए। अपने तख्त पर पहुंचकर उन्हीं संतरियों को भेजा, वो पकड़ लाए। बादशाह ने पूछा अरे सक्के सुना तुझे कीमिया आती है, अजी मियाँ आपने तो पहले भी पूछा था अगर मुझे कीमिया आती तो मैं अभी मारा मारा फिरता, मगर 5-6 महीने जिसने पांव दबाए हो वहां वो कहाँ छुप सकता था। सक्का उसके मुंह को घोरता रहा, बादशाह के मुंह को। बादशाह ने कहा मुझे भी पहचान लिया। सक्के ने कहा मियाँ खूब पहचान लिया। बादशाह ने कहा फिर तू ये क्या कह रहा। सत्य ने कहा मियाँ कीमिया तो पांव दबाने से आती है। ये जुमला है असल, ये जुमला है असल। मियाँ कीमिया तो पांव दबाने से आती है, बादशाह बनकर नहीं आती। मियाँ कीमिया के वास्ते तो सक्का बनना जरूरी है। सुना के बादशाह बहुत खुश हुआ, उसे बहुत इनाम दिया। अगला शेर भी मेरा सुना हुआ नहीं, मेरी तरफ से इजाफा है। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर से पिस जाने के बाद। सक्के ने बात तो बहुत ही सही और पति की कही, खाक सारी तवाजू और खुशामद से जो मिलता है वो बड़ाई और तकबूर से नहीं मिलता। इस किस्म के किस्से तो अपने बड़ों से बहुत सुन रखे हैं, मगर सारे रिसाले में नमूने ही लिखवाए हैं। मपिंदार जाने पिदर गर कसी के बेसाई हरगज बजाए रसी। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मेहनत जफाकशी पस्ती के बड़े किस्से सुनाया करते थे, और उन्हें बहुत अल्लाह ताला उन्हें बहुत जजाए खैर अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ू करे अल्लाह उसको बुलंद दर्जे अता फरमाते हैं। यहाँ तो तवाज़ू भी अल्लाह के लिए नहीं थी, गरज के वास्ते थी, मगर तवाज़ू और सक्के के पांव दबाने ने कीमिया सिखा दी। बहरहाल ये किस्सा एक इबरत के लिए हजरत रहमतुल्लाह अलैह बहुत ताकीद से सुनाया करते थे। आज चूँकि कल तो जुमा है, मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा था हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जज़ाउल आमाल के आखिर में बहुत वया गुर की बात लिखी है। वैसे तो सारी बातें हजरत की इसी तरह की हैं, हजरत खात्मे में लिखते हैं वो आप जा रहे हैं हमें ज़िंदगी में किस तरह अपने आप को बना रखना है। बाज़ आमाल खात्मा बाज़ आमाल मखसूसा के बयान में जो ज़्यादा मुफीद या मुज़िर हैं, यानी फ़ायदा या नुकसान, और आवाम के बाशुबात का जवाब। यूँ तो जितनी इबादतें हैं ताआत हैं सब ज़रूरी, और जितनी सयात हैं सब मुजिर, मगर बाज़ आमाल जो बमंजिले उसूल के हैं ज़्यादा अहतमाम के काबिल हैं, फ़ैलन या तर्क, यानी गुनाहों में उसूल के हैसियत रखते हैं उनको छोड़ना ज़रूरी, नेकियों में उसूल की हैसियत रखते हैं उनको करना ज़रूरी। उनके अहतमाम से दूसरे आमाल की इसलाह की ज़्यादा उम्मीद है, उनको हम दो फसलों में लिखते हैं। पहली आमाल मुफीदा का बयान, ऐसी ताआत का बयान जिनकी हिफाजत से उम्मीद है कि दूसरी ताआत का सिलसिला कायम हो जाए। एक उनमें इल्मे दीन का हासिल करना है, खा किताबों से हासिल किया जाए या उलमा से, बल्कि किताबों से हासिल करने के बाद भी उलमा की सोहबत ज़रूरी है। और हमारी मुराद उलमा से वो उलमा हैं जो अपने इल्म पर खुद अमल करते हों, शरीयत व हकीकत के जामे हों, इत्तिबाए सुन्नत के आशिक हों, तवस्सुत पसंद हों, एतदाल करने इफरात व तफरीत से बचते हों, खल्क पर शफीक हों, तासुब और इनाद या बेजा हिमायत और दुश्मनी उनमें न हो। गो इस वक्त भी बेफजली ताला इस किस्म के उलमा बहुत हैं और हमेशा रहेंगे, जैसा हमारे सरदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, ला यज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक़ ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम। मगर चंद बुजुर्गों का नाम तबरुकन अपने रिसाले में लिखते हैं ताकि गैर मस्कूरीन को मस्कूरीन पर कयास कर सकें, और जिनकी ऐसी शान हो उनकी सोहबत से मुस्तफ़ीद हो सकें। फिर हजरत ने अपने उस ज़माने में जिस ज़माने में रिसाला लिखा था, पहला नाम हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब का है, दूसरा हजरत हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अली का है, तीसरा सहारनपुर में मौलाना अबुल हसन साहब का है, तो चौथा देवबंद में हजरत शेखुलीन का है, और देवबंद में हाजी आबिद हुसैन साहब का, अम्बाले में हजरत साई तवक्कुल शाह साहब का। हजरत ही ने बाद में जब ये रिसाला दोबारा छपा होगा, इसके हाशिए में लिखा है, अफसोस इस वक्त इन हजरात में से कोई भी जिंदा है। बहरहाल कहने का हासिल है कि अहलुल्लाह, उनकी सोहबत के अंदर जाना, ऐसे बुजुर्गों की सोहबत और खिदमत जिस कदर मयसर हो जाए, गनीमत कुबरा व नेमत उज़्मा है। अगर हर रोज मुमकिन न हो तो हफ्ते में आध घंटा जरूर इल्तिजाम करे, उसकी बरकात खुद देख लेगा। ये देखो, रोजाना नहीं तो हफ्ते में एक मरतबा, अब हम तो साल में दो दिन के समझते हैं कि पूरी जिंदगी के लिए काफी हो जाएगा, ये बात बनती नहीं। बाज आमाल का एहतमाम और उनकी बरकात, एक उनमें से नमाज है। जिस तरह हो सके पांचों वक्तों पाबंदी से नमाज पढ़ता रहे, और हत्तल इंकाद जमात हासिल करने की भी कोशिश करे, नमाज मत छोड़ना किसी हालत में। और बदरजे मजबूरी जिस तरह हाथ आए गनीमत है, इससे दरबारे इलाही में एक ताल्लुक और राबता कायम रहेगा, उसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला उसकी हालत दुरुस्त रहेगी। इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाय वल मुनकर। एक उनमें से लोगों से कम बोलना और कम मिलना, और जो कुछ बोलना सोच कर बोलना, हजारों आफतों से महफूज रहने का एक आला दर्जे का आला है। और एक उनमें से मुहासबा और मुराकबा है, यानी अक्सर औकात ये ख्याल रखे कि मैं अपने मालिक के यानी अल्लाह के सामने हाजिर हूं, मेरे तमाम अकवाल यानी बातें अफाल और आमाल अल्लाह की नजर पर उसकी नजर है। यूं ख्याल करे कि इस वक्त मेरा हिसाब हो रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है ये तूने क्यों किया, ये तू क्यों बोला, और मैं जवाब से आजीज हो जाता हूं। ये तो मुहासबा और मुराकबा। और एक उनमें से तौबा और इस्तिग़फ़ार है, ये तौबा इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लो, रोजाना रोजाना उसका एहतमाम करो, उसकी बड़ी बरकत है। सूरह नूह में इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम अनहारा व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। बहरहाल ये रोजी की बरकत और सारी चीजें उसमें आ जाती, रोजाना तौबा और इस्तग़फ़ार, लेकिन सच्चा सच्चे दिल से, खाली रस्मी नहीं। एक बात याद रहे उसको, दोबारा एक चीज उनमें से जो है क्या है, तौबा और इस्तग़फ़ार। जब कभी कोई लग्जिश हो जाए तवक्कुफ न करे, किस वक्त या किसी चीज का इंतजार न करे, फौरन तनाई में जाकर सद्दे में गिरकर खूब तौबा और इस्तग़फ़ार करे। अगर रोना आए तो रोए, वरना रोने की सी सूरत बनाए। ये पांच चीजें हुई, इल्म, सोहबत उलमा, नमाज पंजगाना, किल्लत मुखालतत, कम मेलजोल, मुहासबा और मुराकबा, तोबा और इस्तिग़फ़ार। इंशाअल्लाह इन तमाम उमूर पंजगाना की पाबंदी से, जो मुश्किल नहीं है, तमाम ताआत का दरवाज़ा खुल जाएगा। बहुत अहम चीज़ है, पूरी जिंदगी के तजर्बे की चीज़ हजरत ने लिखी है, देखने में आपको मामूली है, लेकिन अगर इसका एहतमाम कर लेंगे तो यूँ समझो मास्टर की आपके पास आ गई है। दूसरी फल, बाद गुनाहों के बयान में जिनसे बचना जरूरी, ऐसे गुनाहों के बयान में कि उनसे बचने से अल्लाह ताला के फजल से करीब करीब तमाम गुनाहों से नजात हो जाती है। नंबर एक उनमें से गीबत है, उससे तरह तरह के दुनियावी और उखरवी मफासिद पैदा होते हैं, जैसा जाहिर है इसमें आजकल बहुत इब्तिला है। इससे बचने का आसान तरीका यह है कि बिला शदीद जरूरत न किसी का तज़किरा करे, न सुने, न अच्छा न बुरा, अपने जरूरी कामों में मशगूल रहे। ये मजलिस बाजी जो है ना, ये असल जड़ है। जिक्र करे तो अपना ही करे, अपना धंधा क्या थोड़ा है, जो औरों के जिक्र करने की फुर्सत उसको मिलती है। एक उनमें से जुल्म है, ख्वा माली या जानी या जबानी। मसलन किसी का हक मार लिया, छोटा या बड़ा, किसी को नाहक तकलीफ पहुंचाई, किसी की बेअबरूई बेइज्जती की। एक उनमें से अपने को बड़ा समझना, तकब्बुर, औरों को हकीर समझना। जुल्म और गीबत वगैरह उसी से पैदा होते हैं, और भी खराबियां उससे पैदा होती हैं, कीना, हसद, गजब वगैरह। एक उनमें से गुस्सा, कभी नहीं याद कि गुस्सा करके पछताए न हो, क्योंकि हालत गजब में कुव्वत अकलिया मगलूब हो जाती। जो काम उस वक्त होगा अक्ल के खिलाफ ही होगा, जो बात न गुफ्तनी न कहने जैसी थी वो मुंह से निकलेगी, जो काम न करने जैसा था हाथ से हो गया, बाद में गुस्सा उतरने के जिसका कोई तदारुक नहीं हो सकता, कभी कभी उम्र भर के लिए सदमे में गिरफ्तारी हो जाती है। आदमी गुस्से में तीन तीन तलाक दे दी बीवी को, जिंदगी भर का मसला हो। एक उनमें से गैर महरम औरत, मर्द के हक में या मर्द औरत के हक में, से किसी किस्म का इलाका रखना, गैर महरम औरत से, चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना, वो भी दाद बहन खानादान कोई भी हो, हाँ उसको देखना या उससे दिल खुश करने के लिए हम कलाम होना, या तन्हाई में उसके पास बैठना, या उसके पसंदे तबाह के मुताबिक उसको खुश करने के लिए अपनी वजाकता या कलाम को आहिस्ता और नरम करना। मैं सच अर्ज करता हूँ कि इस ताल्लुक से जो खराबियाँ पैदा होती हैं और जो जो मुसीबतें पेश आती हैं, इहाते तहरीर से खारिज हैं। इंशाअल्लाह किसी रिसाले में ज़िमनन उसको किसी कदर ज़्यादा लिखने का इरादा है। एक उनमें से मुश्तबे और हराम खाना, उसी से तमाम ज़ुलमात और कुदूरात नफसानियाँ पैदा होती हैं, क्योंकि ग़िज़ा उसी से बनकर तमाम आज़ा और उरूक रगों में फैलती है, पर जैसी ग़िज़ा होगी वैसा असर तमाम आज़ा में पैदा होगा और वैसे ही आमाल उससे सरदर्द होंगे। ये छह गुनाह हैं जिनसे अक्सर गुनाह पैदा होते हैं, उनको छोड़ने से इंशाल्लाह औरों का छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा, बल्कि उम्मीद है कि खुद ब खुद और गुनाह छूट जाएंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए इन चीज़ों का अहतमाम हो। अल्लाह ताला ने मौका दिया, अपनी ज़िंदगियों की कदर कर लें, ये दोबारा मिलने वाली नहीं है, और यहाँ से जाने के बाद भी जो माहौल अपना पहले गलत था उसके तो करीब भी नहीं जाना, उससे अपने आप को बचाना, वरना जो कुछ मेहनतें की है वो सब बेकार हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।